ओम शांति। आदरणीय रामनाथ भाई जी हमारे मध्य में हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। आपका विषय है व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ कैसे बने। हम सभी को मालूम है कि बाबा बार बार हमें ये अंडरलाइन कराते हैं कि हमें व्यर्थ को समाप्त करना है, तो आज विस्तार से हम समझेंगे कि कैसे व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बना जा सकता है। रामनाथ भाई से आप सभी परिचित भी हैं, आप पिछले 35 से भी अधिक वर्षों से मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे आप कर्नाटक से हैं और यहाँ पर वर्तमान में आप रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और भारत में और विदेशों में भी आप सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं, तो हम आपके अनुभवों से आज लाभ लेंगे, इस विषय पर सुनेंगे व्यर्थ को हम समर्थ कैसे बनाएं।
ओम शांति। सबने दो तीन दिनों से बहुत कुछ सुना है ना, सुना बहुत, सुनने के बाद आचरण में आता है, कहते सुनने के बाद समझ में आया तो आचरण में आता है। इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम सुनते बहुत है, पढ़ते भी है बहुत, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, सुनने के बाद पढ़ने के बाद समझ में जो आता है वो आचरण में आता है। तो मुझे भी एक बात समझ में आई कि अपने जीवन का अनुभव बताता हूं, लेकिन ज्ञान तो बहुत कुछ है कि व्यर्थ का कारण क्या है। बाबा ने भी बहुत कहा बच्चे व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ को समाप्त करो, फुल स्टॉप लगाओ। आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, हम भी अपने जीवन में देखते हैं। तो मुझे अपने जीवन में अनुभव से समझ में आया कि व्यर्थ का कारण क्या है। बहुत सारे कारण है, उसमें विशेष एक कि ब्राह्मणों के लिए को दुनिया के अंदर एक मैनर्स डिसिप्लिन कहते हैं। तो यहां भी जैसे एक भाई ने मेरे से टाइम लिया, मुझे कहा भाई जी 5 बजे 10 बजे मिलता हूं, तो मैंने उसके लिए 10 बजे का टाइम रख दिया, मैं भी फ्री होके बैठा, बस के मिलना है। वो आया ही नहीं, छोड़ दो सोचा, एक बार ठीक हो गया। तो दूसरी दफा जब वो मिलता है, भाई जी मुझे आपसे मिलना है 10 बजे को, तब मेरे मन में विचार चलता है अगर अगले टाइम उसने कहा था 10 बजे आता हूं, लेकिन वो आया नहीं, आज भी नहीं आया, तो तब व्यर्थ चलता है। व्यर्थ का कारण कहां कहां है उसको भी जानना पड़ता है। तो इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट, वायदा, निभाना है, नहीं तो उसको आप इन बिटवीन, आपके सामने बहुत कारण है। आज ने मुझे आज से 40 साल पहले बॉम्बे का एक अनुभव है कि हम दोनों ने एक दफा तय किया हम इस स्टेशन पर मिलेंगे बॉम्बे में, और कहा कहां मिलेंगे स्टेशन पर, मैंने पूछा कि घड़ी के नीचे मिलेंगे। ठीक है, स्टेशन पर घड़ी है, घड़ी के नीचे मिलेंगे। हम आए 10 बजे, घड़ी के नीचे खड़े हो गए, वो भी 10 बजे आए, वो भी घड़ी के नीचे खड़े हो गए। उस समय मोबाइल फोन कुछ नहीं था, तो 1-2 घंटा हुआ, कुछ जरूरी काम था, तो मैं जा करके कह के आया आज नहीं होगा, फिर मैं दूसरे ट्रेन में बैठ के आया। तो घर में जब आए, अरे आप कहां थे, तो मैंने आपने मुझे कहा था घड़ी के नीचे, मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर घड़ी के नीचे खड़ा था, तो मैं भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर घड़ी के नीचे ही खड़ा था, तो आप खड़ा थे। तब समझ में आया प्लेटफॉर्म पर 2 घड़ी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, आगे या पीछे बताया नहीं, हम भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर घड़ी के नीचे हूं। तो कंफ्यूजन, व्यर्थ विचार चलने का कारण क्या, हमारे भी चल रही, कहां गया, वादा करके आया नहीं, निभाए नहीं, समझ नहीं है। लेकिन उनके मन में भी चला, मुझे चला कि हाँ कोई अर्जा नहीं, तो मैं तुरंत दूसरे ट्रेन पर बैठा, फोन करने का भी मार्जिन नहीं, आ गया। जब सन्मुख दोनों मिले तब पता चला दोनों सही है, दोनों ने पीछे या आगे ये नहीं कहा, एक शब्द के मिस्टेक्स, प्लेटफॉर्म पर दोनों आगे भी है पीछे भी है ये पता नहीं था। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर घड़ी के नीचे हम भी खड़े हैं, वो भी खड़े, दोनों सही है, लेकिन दोनों के मन में क्या चल रहा है। उसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, समझ में गैप। जो भाषा हम यूज करते हैं, कभी मिलते हैं तब का एक ही आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल आत्म अभिमानी, वो चारों दिशा सोच समझ के बोलता है। अगर आप अपने को मनुष्य समझते हो, देहधारी समझते हो, तो वन डायमेंशन है, सामने देखते हो, इधर इधर आगे पीछे नहीं पता होता, वन डायमेंशन का आगे ही देखते हो। तो हमारे पिछले कहा कि वह सब लोग कहते, सारी दुनिया में विश्व के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी भी है, सब लोग कहते हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। तो क्या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? तो हम सिर्फ एक जग जानते हैं, इसलिए दुनिया में लोग कहते रहे खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, कल किसको पता है? तो उनको, इसलिए मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। मनुष्य किसको कहते हो आप, प्राणी किसको कहते हो? प्राणी उसको कहा, अगर एक प्राणी को कुत्ते को बुला के दो रोटी दे दो, वो एक रोटी कल के लिए रखेगा? नहीं, आज मिला आज ही खाओ बस। तो अगर मनुष्य को किसी को बुलाओ, अगर उसको 10 रुपया दे दो, 2 रुपया कल के लिए रखेगा मनुष्य वो। तो वर्तमान और भविष्य दोनों जानता है, सोचता है, हर कर्म करते समय भविष्य क्या होगा ये जानता है, ये समझ के कर्म करता है, वो मनुष्य है। अगर आज मनुष्य के शरीर में होते हुए भी सब शास्त्रों में कहा मानवः मृगः, मनुष्य है, तो लोगों ने सोचा कि मनुष्य प्राणी बनता है। नहीं, मानवः, आप मनुष्य हो, लेकिन हमारी आचरण चलन बिहेवियर प्राणी जैसी हो गई है। मनुष्य के शरीर में रहते हुए सिर्फ वर्तमान देखते हैं, तो हर कर्म का, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। कर्मों की बहुत गुह्य गति है, तो कर्म करते समय हर चीज, हम कर्म क्षेत्र में, कर्म सन्यासी नहीं है, हर सेकंड हमारे कर्म है। उसमें एक एक मैं बताता हूं, एक जब मिलते हो, प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, जैसे मैं आपने किसी से पैसा लिया, हाँ आपके आय वैली में आपको जरूरत था, मदद किया, लेकिन आपने मदद करते समय कहा था 1 साल के बाद 1 महीने के बाद लौटाऊंगा, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ परिस्थिति आई, लेकिन आपने वादा किया था, वो उसको पता नहीं है, लेकिन उसके मन में चलता विचार, अरे ये व्यक्ति ने वादा किया था, 1 महीना हुआ दिया नहीं, 1.5 महीना हो गया दिया नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऐसे करना चाहिए, ये व्यर्थ का कारण कौन, ये किसके अकाउंट में जमा होगा? कारण पहला जानना चाहिए, वो तो खराब है, कारण कौन? तब बाबा ने बहुत गुह्य गति दिया। हमको याद है शुरू शुरू में, थोड़े कुमार भी, हमें अपना अनुभव बताता हूं कि कितना हम सोचते थे, पहले कॉलेज में जाते थे हम, तो सेंटर से रात को, पहले शाम को कॉलेज हुआ तो हमारी एक और एक बहन थी, कजिन बहन, वो भी ज्ञान में चलती थी, वो साइंस में पढ़ती थी, 5-6 बजे कॉलेज छूटता है, 5:30 बजे, उसके बाद सेंटर में जाते थे, उसके बाद घर जाने के लिए रात में सेंटर के बाद 9 बजे बस होती थी, और गांव में वो एक ही बस जाती थी लास्ट में। तो सब कुछ करके हम रात में बस पर दोनों जाते थे, तो कोई बीड़ी पीता है, कोई आवाज करता है, तो दोनों एक सीट पर बैठते थे। तब पीछे, अरे हाथ में किताब है, पीछे किसी ने एक दिन, बहुत महीने चला, एक दिन किसी ने बोला, आवाज सुनाई दिया, अरे रात को कॉलेज होता है क्या, पढ़ने के नाम से शहर में आते, इधर उधर घूमते, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे किसी ने बोला, तो मेरे कान में आवाज आए। दूसरे दिन मैंने अपने आप दूसरे सीट पर बैठा, तो बहन जी कहने लगी, आप इधर बैठो, वो बैठेगा, शराब पीता है, दारू पीता है, आवाज नहीं, आप उधर ही बैठो, मैं इधर ही बैठता हूं, बोला नहीं मैंने, लेकिन मुझे समझ में आया, समझते मेरे कारण, मेरे बिहेवियर के कारण, अगर औरों के मन में गलत विचार चलता है उसका भी मैं भागीदार हूं। सिर्फ उसके मन में गलत विचार आने का कारण कौन, मेरी चलन। हमको ऐसी स्वतंत्रता नहीं, आप जो चाहे करो। तब कहा हम एक परिवार है, वन गॉड वन फैमिली, एक परिवार के अंदर एक दूसरे से संबंध है, रिलेशन है। संन्यास नहीं, हमारा ग्रस्त धर्म है, संसार में हम रहते हैं। हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, मेरी चलन, मेरी, मैंने प्रॉमिस किया मैं इससे समय आता हूं। आपके सामने बहुत सारी परिस्थिति, आप गलत भी हैं, लेकिन उसके बीच में जो वादा किया, मैं तो अपना प्लान करूंगा ना, तो उसके लिए मेरे मन में गलत विचार, हमारी आचरण बोल, हम ऐसे कर्म करते हैं। जैसे घर में सब रहते, पिताजी ने या किसी ने इधर किताब रखा, आपने कल उठा करके उधर रख दिया, आपने पढ़ते पढ़ते ये चीज यहां ठीक नहीं उधर रख दिया, लेकिन कोई आता है पिताजी या भाई या कोई भी, अरे ये चीज कहां गई किधर गई, तो वो ढूंढता रहता है। आप मिले नहीं, आप कहीं चले गए, तो वो ढूंढता, उसके मन में जो व्यर्थ समय गया, विचार चला, उसका कारण कौन। तब कहा संसार में जहां से चीज उठाते हो वहां ही रखो, ग्रस्त में रहते हुए दूसरे का विचार न चले। अगर आपको इधर ठीक नहीं, उनको पूछो, पिताजी भाई वाइफ युगल बहन जी भाई जी, ये इधर नहीं, ये इधर रखो, ये इधर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उनको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है। हमारा दृष्टिकोण अलग, औरों का दृष्टिकोण अलग, तो दृष्टिकोण में भी अंतर है। हम कुछ चाहते हैं और कुछ चाहता है। व्यर्थ का कारण क्या है, कहां से व्यर्थ है ये? आत्मा तो वही है, मनुष्य तो वही है, ज्ञान तो वही है, तो उसके कारण है। संबंध में जब संबंध संपर्क में आते हो, कहां कहां चलता है, उसका भी भागीदार हमी है, जो उसका निमित्त है। बीज कौन है? बीज है मैं, हमारे चलन, हमारे बोल, हमारे कर्म। मेरे कर्म के कारण इनके मन में विचार चला, उसके मन में व्यर्थ चलाने का कारण कौन, इसको भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। सिर्फ व्यर्थ नहीं सोचो, व्यर्थ ठीक नहीं, जानते चाहते नहीं हम, कोई चाहता है नहीं, चाहते हुए आज तक देखा गया। आप मुझे ही पूछो, मैं अपना बताता हूं, व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे संबंध संपर्क में कर्मों में सब जगह आने वाले कोई भी समर्थ नहीं है। तो सत्युग में सब समर्थ है, कोई भी गलत आचरण नहीं करता है, गलत शब्द नहीं बोलता है, गलत चलन नहीं चलता है, गलत सोचता नहीं, कि सब समर्थ है। सत्युग आएगा तो हमारे से व्यर्थ चला जाएगा अपने आप, कि सब समर्थ है, सभी अंगुली एक जैसे है। यहां सभी अंगुली एक हाथ के एक जैसे नहीं है, एक मोटी है, एक लंबी है, एक बारीक है, तो ये अलग अलग है। तब कहा वैरायटी झाड़, और सत्युग में वन फैमिली, एक बाप एक ही राजा, एक ही परिवार, एक भाषा, सब एक जैसा है। तो क्या बाबा कहता है ये वहां जाके हम परिवर्तन करेंगे? अब प्रश्न आया कि इस व्यर्थ को समाप्त करने के लिए सत्युग में जाके करेंगे? तो बाबा ने बहुत दफा कहा, और आप और हम जानते हैं कि संस्कार से संसार बनता है। बीज जमीन के अंदर होती है, बाहर फल फूल झाड़ दिखाई देता है, बीज गुप्त है। तो सारा झाड़ कैसे बड़ा हो गया? बीज में है। अगर बीज में नहीं है तो झाड़ फल फूल होता नहीं है। संस्कार मूल है, तो संस्कार संगम पर डालना है। तो कैसे डालेंगे, क्या तरीका है इसका, किसी के पास है? अब बहुत दिन क्लास सुना, बहुत कुछ सुना, खजाने बहुत जमा किया है, बताओ इस सव्यर्थ को समाप्त करने के लिए किसी के पास कोई प्लान है तो बताओ। जी, आपका भी थोड़ा सुनना चाहिए ना, फीडबैक। हाँ हाँ, तो हाँ, मैं तो चाहता हूं श्रेष्ठ संकल्प बनाओ। शुभ संकल्प कहां से लेके आओ, कौन से मार्केट में मिलता है, कौन सा वो? हाँ परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन वो सब संकल्प मिलता ही नहीं ना, वो कहां मिलेगा। अच्छा भाई कहता है श्रेष्ठ संकल्प से संस्कार बनता है, तो श्रेष्ठ संकल्प कहां से मिलता है? कहते भावना से मिलता है, विचार संकल्प से मिलता है, कर्मों से मिलता है। मंजूर नहीं? कोई मार्केट हो ना, फलाना कपड़ा फलाने चीज कहां मिलता है? ये मार्केट में मिलता है। तो बाबा के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज बाबा ने कहा, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, किसके लिए बाबा ने खुला है? मनुष्य देवता बनने की है। तो इस यूनिवर्सिटी में, इस मार्केट में हाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को सारा दिन मुरली सुबेरे सुनते हो आप, हम भी सुनता हूं, नोट भी करते हो। अगर आपको तुरंत फोन करते किसी ने पूछ लिया, भाई जी आज मैंने मुरली नहीं सुनी, आज मुरली के पॉइंट बताओ, अरे आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, क्या था वो बताओ। अब वो ढूंढता है, ठीक है डायरी ढूंढता है, आज मैंने प्रैक्टिकल किया तब बताता हूं, ढूंढता हो तो ढूंढ रहा है, डायरी मिली नहीं, तब तक हमारा बिल तो 1-10 रुपया हो गया। तो ये पढ़ाई का रिजल्ट नहीं है। तब हमने अपने जीवन में एक नियम बनाया बहुत सालों से, तो मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ स्थिति हो, समर्थ संकल्प हो, समर्थ संस्कार हो, तो समर्थ जीवन बनेगा भविष्य के लिए भी। तो उसके लिए मैंने अपने जीवन में एक अभ्यास किया, आप भी देखना, 1 हफ्ता करो और रिजल्ट देख लो। क्योंकि कोई भी हम क्या 84 जन्म चल के आए, आत्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं, तमो प्रधान अवस्था हुई है, तब बाबा को आना पड़ा। आप में से कोई कहेगा भाई जी कैसे कहते हो हम तमो प्रधान है, हम तो स्वतो प्रधान है, बाबा के बच्चे है, भगवान के बच्चे है, आप ऐसे क्यों कहते हो? ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूं, आप में से कोई अच्छे होंगे, फिर भी एक परीक्षा करके देख लो, ट्राई करके देखना पड़ेगा ना। अभी आप जितने यहां भाई बहने बैठे हो, तो आप में से कोई एक बताओ या कोई भी, आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ उठाओ, कोई पुण्यात्मा तो होगा ना। 1 महीने के अंदर, हाँ 1 ही महीने, 1 साल भी नहीं, 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया ऐसे कोई हाथ है तो उठाओ। इधर तो कोई नहीं दिखा, इधर एक हैट वाला दिखाई देता, 2, 1 पुण्य, 1 दिन ही नहीं किया, दूसरों ने आपके ऊपर किया, आपने नहीं किया, दूसरों ने किया आपके ऊपर, मन में तो चला, हाँ मन में चला है ना, तो फिर मन और मुख और माताजी बताओ, 2 वेरीफाई करके देखना पड़ेगा ना। कोई कहता ये मेरा मटका बहुत अच्छा है, तो ठोक के देखना पड़ेगा ना, हाँ नहीं तो ऐसे कहते ये बहुत अच्छा है, तो ठोकने के बाद पता हाथ लगाते फट गया, ऐसा नहीं होना, चलो वेरीफाई करना चाहिए, कोई भी चीज ले लो विथ प्रूफ। तो इसलिए कहा देख लो आज बाबा के हम बच्चे कितना कुमार है, कितना गृहस्थी है, परिवार में रहते हो है ना, कितने सालों से, तो ज्ञान सुना कल बाबा ने, अभी कहा बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, तो माना आप सत्युग में जाना नहीं चाहते, संगम अच्छा है, बाबा से हर साल मिलन मना सकते हैं, ऐसा सत्युग आके जाना तो हमारे जाने की इच्छा नहीं है, ऐसा कोई है? या आप लोगों को किसी को छुट्टी दिया बाबा ने, गुस्सा भी करो बच्चे चलेगा, अष्टरत्नों में 108 में आएगा, गुस्सा करो चलेगा, कोई हर्जा नहीं, वो तो माइनर है, चलेगा? ऐसा किसी को छुट्टी है? बाबा ने कई श्रीमत दिया, बच्चे 1% भी गुस्सा रहेगा तो चलेगा, ऐसा है तो बताओ। तो कहा फिर क्या चीज हो गया? तब कहा कुछ यथार्थ, बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन उसमें से एक काम अगर आप थोड़े दिन करो, क्योंकि सिर दर्द होता है तो उसके लिए दवा है, आप कहो 10 दफा 100 दफा सारा दिन कहो कि सिर दर्द जाओ नहीं चाहिए मुझे, मिटा दो, निकल जाओ, निकल जाएगा, 100 दफा कहो नहीं, उसकी दवा है, अगर उसकी दवा लेते हो आप तो वो दवा से जाएगा, हर चीज की निवारण के लिए, कारण के लिए निवारण है, निवारण के लिए कारण है, बीमारी की दवा है। तो यहां भी मैंने देखा, अगर आप गुस्से को छोड़ना चाहते हो, मैंने देखा सिंपल तरीका है, और वो भी मिनिमम 1 वीक, मैक्सिमम 15 दिन आप करके देख लो। कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं ये गोली ले लो सिर दर्द जाएगा, विश्वास फेथ निश्चय रखते हैं, लेते हैं गोली, 1 गोली खाते ही पता चलता है अरे कुछ हुआ ही नहीं है, पता नहीं डॉक्टर किस मूड में था, कौन सी दवाई दे, छीक छोड़ दो, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, है ना। एक गोली खाते ही थोड़ा सा 1% पता चलता है, थोड़ा सा ठीक हो गया है। हाँ, डॉक्टर भी ठीक है, गोली भी ठीक है, पूरा कोर्स करना चाहिए। विदाउट फेथ नथिंग विल एंटर इनसाइड। कितना भी सुन लो, आप सुनने से अंदर जाता ना। अरे सब लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करो, कौन व्यक्ति है वो बिना गुस्से का, कौन है? हर एक मनुष्य देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। अभी देख करके लेता है। मार्केट में आप कितना भी कोई कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, जब तक आप देखते नहीं हो तब तक लेते नहीं हो। तो मनुष्य बाबा ने भी कहा, बच्चे बाप देख, बच्चे देखना चाहता है। आपके पीछे बहुत बड़ी वंशावली है, पूर्वज हो आप, इष्ट देव हो, आपके पीछे बहुत बड़ी लंबी लाइन है। अभी भी देखो, हम किसको देख के देखते हैं? बाबा मम्मा को। हमारे सामने कोई सैंपल चाहे ना, बाबा ने सैंपल दिया और बाबा ने कहा बच्चे इनको फॉलो करो। देखो आपके सामने सैंपल है। पहले भी था भारत में, चित्र थे, लक्ष्मी नारायण था, कृष्ण था, चित्र को देख के चलते थे। अभी चैतन्य रखा है तो अभी भी संसार चैतन्य देखना चाहता है। उसके आप पूछेंगे भाई जी क्या करें, कौन सी दवाई? तो मेरा अनुभव मुझे बताता है, मेरे अनुसार, कि मैं क्या करता हूं, जब मुरली सुनता हूं बिल्कुल ध्यान से सुनता हूं। और आज बाबा ने नया क्या सुनाया, विशेष एक पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, ज्ञान योग धारणा सेवा, चार सब्जेक्ट है, उसमें से एक मुरली के पॉइंट, क्योंकि हर एक का अपना लक्ष्य है। तो वैसे लक्षण कोई कहता नहीं मुझे ओनली सेवा करना है, वो सेवा के पॉइंट ही ले लेगा। किसी को ऐसा है मुझे बहुत अच्छा योग करना है तो योग के पॉइंट ही उसको दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। हर एक का अपना लक्ष्य है, तो उसके अनुसार रोज मुरली से आप एक पॉइंट ले लो और छोटे कागज में लिख करके जेब में रखना। बाबा ने अभी दो दिन पहले भी कहा, बहुत दफा कहा, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ये वेल्थ है, ये अविनाशी धन है। धन को कहां रखते हो? ऐसे कहीं रखते हो ना, जेब में रखते हो। तो ये धन को एक मुरली के पॉइंट रोज आप एक छोटे से कागज में लिख के रख दो। लेकिन संसार में हम बहुत बिजी है, हमारे पास समय नहीं, बिजनेस करना, इतने सारे फोन आते हैं, इतनी सारी बातें करना है, करना है, संसार छोड़ना नहीं, सब कुछ करते रहो। लेकिन क्या करें, मुरली कैसे याद रखेंगे? इंग्लिश में उसको कहा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। कितना भी बिजी हो, शरीर को तीन दफा तो खिलाते हैं ना, नाश्ता भी कराते हो, दिन में भी खाते हो, रात को भी खाते हो, सवेरे खाया था, शाम को क्यों खा रहे हो? हाँ, शरीर के अंदर है सवेरे वाला तो भी भूख लगती है। शरीर का हम ध्यान देते हैं, हेल्दी बॉडी है लेकिन वीक माइंड। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि खाना नहीं खाए ना, तीन दफा खा लो, लेकिन आत्मा को भी तीन दफा खिलाओ। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो शरीर का ध्यान दिया, आत्मा को तीन दफा खाने के लिए, खिलाने के लिए सेंटर में जाएंगे तीन दफा? नहीं हो सकता है। तो इसके लिए तरीका बताया, एक मुरली के पॉइंट अगर जेब में है, यहां से गए आप मुरली सुन के, नाश्ते पर बैठते हो, बाबा ने हर एक को, भगवान ने दो हाथ दिया है, तो ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ क्या कर रहा है? आत्मा को भी खिलाओ सेम टाइम। आज बाबा ने क्या कहा, हो गया, बस खाना अंदर गया, अपने आप काम करेगा, मशीनरी लगी है, फिर भूल जाओ, को हर्जा नहीं, काम में बिजी रहो, संसार करो। रात दिन में खाना खाने बैठ गए तो ये हाथ नहीं जाता है, यही हाथ जाता है, ये हाथ इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो ये हाथ तुरंत निकाल के पड़ो, बस खाना खिलाया, बस। रात को खाना खाने बैठते हो, खाना आते ही ये हाथ कहां जा रहा है? अगर आप मिनिमम तीन दफा आज की एक मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाते हो, पढ़ना सुनना अलग, पढ़ाना, पढ़ने के बाद स्वयं को पढ़ाओ, रिमाइंड करो कहते हैं, रिवाइज करो कहते हैं, अपने आप को पढ़ाओ, अगर मिनिमम तीन दफा पढ़ाते हो, ये संस्कार बनता है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, करके देखना, सिर्फ एक हफ्ता करो। सवेरे सुना हुआ रात तक याद नहीं रहती, क्यों नहीं रहती है? हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, इतना प्योर कोई नहीं है। संस्कृत में कहते हैं एक पार्टी, द्विपार्टी और त्रिपार्टी। एक बच्चे को तीन दफा चार दफा पढ़ाओ तब याद रहता है, कहीं रेयरली एक बच्चा होता है उसको एक दफा पढ़ाओ तुरंत रिपीट करता है वर्ड बाय वर्ड। थोड़े से बाबा के बच्चे हैं। तो इसके लिए कहा आम को देखते हुए एक पॉइंट जेब में रखो। फिर बाबा ने दूसरा एक कहा, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी। आप कहते भाई जी एक हफ्ता क्यों, दो तीन दिन के अंदर ही जा सकता है ना, और फास्ट जाना चाहते हो। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी के भी तरीका है इसके अंदर ही। ऐसे पांच तरीके हैं। आप गृहस्थ में रहते हुए इसमें से तीन तरीके कर सकते हो। एक, मुरली के पॉइंट रोज कल सवेरे निकाल के छोड़ दो, दूसरा डाल दो। अगर सेंटर में किसी कारण गए नहीं गए तो मैंने मेरे मोबाइल में है नहीं, आप सेंटर में फोन करके पूछो, भैया जी आज मुझे बाबा ने क्या कहा, मैं नहीं आ सकता हूं, बीमार हूं, कहीं गया हूं, तो मुरली के पॉइंट एक सुनाओ, वो लिख के रखो। सोर्स से ले लो, इधर उधर से नहीं लेना। सोर्स क्या है, पावर हाउस से करंट ले लो। तो रोज सेंटर में पूछ के सेंटर से एक मुरली के पॉइंट लिख के जेब में कहीं भी रहो। ये एक तरीका। दूसरा है कि आप पूछेंगे हमको और भी तीव्र जाना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ बाबा कहता करो, वो क्या है, उसका तरीका है कि सभी के पास आज के दुनिया में वर्तमान समय के अनुसार सबके पास मोबाइल है, फोन कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, ईमेल है, फोन है, तो उसको यूज करो। कर्म के लिए, सेवा के लिए, बिजनेस के लिए यूज 100% करो, लेकिन उसके साथ 1% ईश्वरीय सेवा के लिए, स्वयं के भाग्य के लिए भी यूज करो। वो क्या, अगर इस भाई ने हमको फोन किया बिजनेस के लिए, ये करना है वो करना है, हाँ बात करो, एक घंटा बात करो, बात करते करते हो गया तब तक निकाल के रख देना, नहीं तो याद नहीं रहता है। भाई जी हो गया, ठहरे ठहरो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, पढ़ के बताना, नहीं तो याद नहीं रहती उस समय। अगर कोई संसार की इधर उधर की बातें सुनाता है, इधर एक्सीडेंट हुआ, ये बीमारी हो गई, ये हो गई, आप सारा दिन में देखो कोई किसी को, आज तक इतने दिन आप यहां रहे, किसी ने किसी को आज की मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? आपने सुनी, झोली भर लिया, लेकिन किसी को खिलाया, एक को भी खिलाया नहीं, एक नहीं किया, एक है बस बाबा का एक। अच्छा देखो धीरे धीरे उठा रहे, दो तीन ही है बस, सुनाया एक दूसरों का ना, ये है। अगर आज सुनी हुई मुरली के पॉइंट जेब में रखो, किसी ने फोन किया बात करो अच्छी तरह से, बिजनेस का हो, इधर का हो, उधर का हो, कोई दुख का समाचार सुनाता है, ये हो गया, ये हो गया, सुनना पड़ता है, नहीं सुनता हूं नहीं, हम संसार में रहते हैं, सुन लो। अगर उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, काला दाग लगता है तुरंत साबुन से धो लो, निकल गया। तो अगर उन्होंने कुछ बात बताई गलत, अंदर प्रभाव पड़ता है, तुरंत पॉजिटिव निकालो, अरे आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, नेगेटिव आया, पॉजिटिव एक्टिवेट किया, नेगेटिव वाइप आउट। कर्म क्षेत्र में काले दाग लगते हैं, बाबा ने अभी कहा था कलंक के धर बनना है, कोई कलंक लगेगा, कोई और कुछ कहेगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र है ना, तीर लगेंगे, लेकिन उसके लिए दवा सदा तैयार, ये संजीवनी बूटी है। औरों के बोल, औरों के कर्म कभी कभी हमें बेहोश कर देता है, तब उस समय होश में कौन लाएगा? तो बाबा ने संजीवनी बूटी दिया, ये ज्ञान का रतन अपने जेब में रखो। अगर उसने कुछ इधर उधर की कुछ भी बात किया, कोई हर्जा नहीं, उसके पास नेगेटिव था, आप एक हीरा दे दो, ढूंढने जाओ मिलेगा नहीं, मुरली और डायरी और एक जगह पर, आप एक और एक जगह पर, याद रखो, याद रहता नहीं है। तो क्या है, नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल, ज्ञान सदा जागृत रहना चाहिए। कहां रहे, जेब में कम से कम रखो, पढ़ के सुनाओ। अब आप कहेंगे आपके बिजनेस में, व्यवहार में, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई ज्ञान में नहीं चलता, और कोई है, भाई जी अज्ञानी है, कोई अर्जा नहीं, अज्ञानी हो कोई भी, उसने भी कुछ बिजनेस की, किसी के बात किया, उसको बाबा ने कब, शिव बाबा के नाम नहीं लेना, बाबा ने कहा नहीं बोलना, आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, कभी बताते ना, आज न्यूज़पेपर में ऐसे आया, टीवी में ऐसे आया, बताते हो ना, तो उसके जगह पर मैंने आज एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी। गुस्सा करने से क्या होता है बताओ, बाबा की पॉइंट, आप बाबा ने कहते हुए बाबा के महावाक्य, श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, आज हरेक को एक ही मुरली के पॉइंट 10-15 दफा औरों को सुनाओ, तब बाबा ने कहा ये ज्ञान के खजाने अविनाशी बनाओ, सारा कलप ये ज्ञान के खजाने आपको काम करेगा, ये धन है, इट इज इम्पेरिशेबल वेल्थ। अगर उसमें भी आप चाहते हो कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देता है तो लेना नहीं, नहीं चाहिए, वो कल यहां ही छोड़ के जाना है। और वो ऋण भी लेगा आपसे, आपको मैंने दिया था मुझे ले लो, मुझे दे दो, मांगने भी आएगा, कल आज देगा कल मांगने आएगा, ऋणी बनाएगा हमको। अगर एक उसके जगह पर आप 50 रुपया निकाल के रख दो एक महीने में मुरली के पॉइंट सुनाने के लिए, आज इनको सुनाओ कल उनको सुनाओ कल परसों उनको सुनाओ, 50 रुपए लगेंगे महीने में मोबाइल के लिए, तो वो 50 रुपया सारे क्लब में आपकी परवरिश करेगा। ये धन अविनाशी कमाई करा देगा आपको, सारे क्लब में आपके प्रारंभ। उन्होंने मुझे 10 साल पहले एक मुरली के पॉइंट सुनाया था, जब परिस्थिति आई याद आया, उन्होंने उस दिन कहा था, चाहे कोई हो ज्ञानी हो अज्ञानी को भी याद आएगा। तब बाबा ने कहा ये ज्ञान अविनाशी, इसके लिए 50 रुपया हर महीने निकाल के रख दो, ये सारे 10 करोड़ 100 करोड़ आपको कमाई देगा। और किसी ने 1 करोड़ भी देता है वो कल मांगने आएगा, आपको ऋणी बनाएगा, मैंने दिया था दे दो, और वो आप ले भी नहीं जा सकते हो, यहां छोड़ देना है। लेकिन ये बाबा जो धन देता है तब कहता है बाप अविनाशी देता है, विनाशी कोई चीज नहीं देता है। कैसे अविनाशी देता है वो, कहां देता है, ये तरीका है। ये अविनाशी धन सारे कल्प आपकी प्राप्ति करेगा। तो इसको 1 50 रुपया अगर आप खर्चा भी करते हो, ये सारे कल्प आपको आपकी पालना करेगा। तो आज के एक मुरली के पॉइंट आप गिनती करो, सारे दिन में किस किस को सुनाते हो आप, मिनिमम एक स्वयं को पढ़ाओ, स्वपरिवर्तन, स्वयं को समझ में आएगा, खाना गया हजम करेगा, अपने आप ताकत आएंगी, क्योंकि मनन चिंतन करने के लिए बैठो चिंतन करो, कोई खाली नहीं, एक मिनट भी खाली नहीं। अभी भी लगता है भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन एक दफा घर में चक्कर लगा के आया, अपने बिजनेस को भी देख के आया है ना, यहां बैठे फिजिकली वी आर हियर, तन यहां है, मन भी यहां है, लेकिन से लगाओ, लेकिन और कहीं लगे, क्यों, संसार में हम, कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई माता बैठी है दौड़ दौड़ के मुरली सुनने आती है, सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से प्यार से आती है, लेकिन बैठे बैठे मुरली, अरे बच्चे स्कूल में गया कि नहीं है, नाश्ता किया कि नहीं उसने, किसको न वहां है न यहां है ना, बुद्धि हमारे संसार में जुटी हुई है, तो वो अपने आप डिटैच नहीं हो सकते। इसलिए आज बाबा ने कहा मुरली में बहुत अच्छी बात कि बच्चे कभी कभी कहते हैं मेरा तकदीर ऐसा है ना, मैं योग लगा ही नहीं सकता हूं, मेरा योग लगता ही नहीं है, कारण कारण ये सब है कि हमारी बुद्धि और कहीं लगी हुई है। तो वो बाबा से योग कैसे लगेगा, साइंस कहता है 2 थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, या परिवार को याद करो या बाबा को याद करो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। यहां बैठे बैठे आप देखना क्लास में कहना पड़ता है मोबाइल नहीं चलाओ, तो ये एक कहना भी हमारे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, बाबा के बच्चों के लिए एक इंसल्ट है, क्यों आप आए हम पढ़ाई के लिए भगवान से कुछ लेने आए, तो हम दोनों करना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं और ज्ञान भी सुनना चाहते हैं, होगा, कोई एक काम करो ना, बिजनेस करना है तो करो, तो ज्ञान सुनना है तो ज्ञान सुनो। तो यहां बैठे हुए भी आप समझते हैं मैं घर में बिजनेस की बात करो, 2 थिंग्स कैन नॉट बी डन, ना उधर है ना इधर है, 0 हो गया। तो थोड़े समय मोबाइल को भी समय दे दो, खाली रहने दो, उसको भी रेस्ट चाहिए, बाबा 1 घंटा मुझे कमाई करनी है, फिर 8-10 घंटा वो कमाई करो, उसके लिए मना तो किसी ने नहीं किया, कर्म संन्यासी नहीं करो, अगर फिर भी अगर मोबाइल आपने कमरे में छोड़ा कहीं रखा तो मिस कॉल आते हैं, जाने के बाद करो, हम भी ऐसे करते हैं, मोबाइल बंद नहीं करते, रखो, फोन आए जाने का 1 घंटे के बाद करो, जिस जिसको मिस कॉल उनसे बात करो, अब भी करना, कोई डॉक्टर तो नहीं है, इमरजेंसी है ना, कई बातें हमें सीखनी पड़ती है। साइंस ने साधन दिया है, इसको कहा किसी के मन में, अगर आप यहां बैठ के फोन करते हो कितने लोगों के मन में विचार, रहे ये क्या बात कर रहा है, उसको आवाज सुनाई देता, ध्यान उधर गया, आवाज गया, एक व्यक्ति लेट आता है, व्यर्थ का कारण बताता हूं बहुत, अगर देखो सोफा पर बैठना है क्लास में, सबका डिसिप्लिन है, लेट आता है पीछे बैठो। आप बीच में आते हो तो कितने लोग अगर पाए उठाओ, इधर देखो उधर, कितने लोगों का अटेंशन चेंज हो जाता है। वो बहुत ध्यान से बैठा है ज्ञान सुनने योग करने, आप बीच में आते हो तो उसके सामने पर्दा आ गया, हिलाया उसको, बाजू में जाओ, आपके लिए कारण है। लेकिन हमारे कर्म आचरण कितने लोगों को डिस्टर्ब करता है, ये मर्यादा, दिस इज डिसिप्लिन, ये दैवी गुण, ये अगर हमारे अंदर नहीं आया तो ये व्यर्थ चलेगा। अरे ये अभी क्यों आया, देखो मुझे हिलाया, मैं अच्छी तरह से योग में बैठा था, बाबा से लिंक तो जुड़ रहा था, मैं इतने बीच में आकर के हिलाया, इसने मेरा योग भाग्य को बिगाड़ा, व्यर्थ चलेगा ना। तो ये समझ, अगर हम लेते हैं मेरे कारण किसी के मन में विचार न चले, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूं, अकेले बैठ जाऊं बाजू में, लेट आया पीछे बैठो, अगर लेट आकर के आप आगे आगे बैठना चाहते हो सबके सामने, कितना लोगों का नजर जाती है, डिस्टर्बेंस होता है, ये व्यर्थ का कारण हमारी चलन। तो ये व्यर्थ को अगर आप स्वयं का औरों का समाप्त करना चाहते हो तो एक ये तरीका बताया, दूसरा मुरली के लिए, स्वयं के लिए भी, कभी गाड़ी में बैठे हो खाली है, इधर देखते हो उधर देखते हो कि खाली है, आइडल माइंड, तो उस समय हमारे जेब में संजीवनी बूटी है, निकाल के पढ़ो बाबा ने क्या कहा, 5-10 मिनट चलेगा, खाली है, कोई मिला उससे बात करने के लिए ज्ञान के पॉइंट याद ही नहीं तो उसको पढ़ा सकते हो, तो ज्ञान आपके जेब में हो। और आप इससे देख लो, एक मुरली के पॉइंट में चारों सब्जेक्ट समाये हुए हैं, ज्ञान योग धारणा, ये एक काम करो आप, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। देख लो एक मुरली के पॉइंट है, आप अपनी धारणा के लिए बार बार पढ़ाते हो, आपकी धारणा होंगी याद रहेगा, मुझे आज गुस्सा नहीं करना चाहिए, धारणा का सब्जेक्ट हो गया। किसी ने फोन किया, किसी को आपने मुरली के पॉइंट सुनाया, क्या कहा, मैं कहता हूं उसे नहीं कहता, बाबा ने कहा, बाबा याद आया, आज बाबा ने ये कहा, उसकी सेवा की आपने, घर बैठे सब कुछ करते हुए आपने अपना भाग्य भी बनाया, सेवा भी किया, स्वयं को भी पढ़ाया, और उसमें यह भी है, कहते हो बार बार बाबा ने कहा, बाबा की याद भी आई, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट एक में हुआ। कि आज की दुनिया में ऐसी चीज चाहिए, एक काम में सब कुछ समाया हुआ हो, क्योंकि किसी के पास एक घंटा योग में बैठो समय नहीं है, मुरली सुनो, एक घंटा योग भी करो सेवा भी करो, समय नहीं है, समय की कमी है, स्कैर्सिटी है। तो एक में ही सब समाया हुआ हो, ज्ञान योग धारणा सेवा, भाग्य सेवा कैसे करेंगे, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, कभी कर ही नहीं सकते है, नहीं, आप नौकरी करते करते आपका भाग्य बना सकते हो, करते करते दिन में 2-4 दफा किसी किसी को फोन करो, मुरली के पॉइंट सुनाया, आपने उसकी सेवा किया, किसी के मन में बहुत तूफान चल रहा था, बहुत विघ्न आए थे, आपने मुरली के पॉइंट बताया, कहते आपने मुझे मुरली सुनाया, रिलीफ हो गया, संजीवनी बूटी मिल गई, बेहोश हो गया था होश में आ गया। तो ये सेवा है, ये भाग्य बनाने की तरीका है। और अपना भी व्यर्थ खत्म करते हो, दूसरों के मन में भी जो व्यर्थ चलता है, जो बाबा ने आज कहा मुरली में, शुभ भावना। लेकिन यहां आपके मन में एक विचार रहेगा, एक दिन मुझे एक माताजी ने किसने कहा, भाई जी हम 6 महीने से शुभ भावना देते हैं लेकिन वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कारण, तो क्या करते हम पहले, अरे ये भाई ना इसने देखो मुझे ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, व्यर्थ भी चलाते हैं, कभी याद आता नहीं बाबा ने कहा शुभ भावना, तो फिर शुभ भावना भी देते है ना, दोनों करते हैं, इसलिए शुभ भावना काम नहीं करती है। अगर उन्होंने कितना भी दुख दिया, कितना भी कुछ कहा, नहीं उसके ऊपर सोचना नहीं, रिपीट नहीं करना, सिर्फ बाबा ये आपका बच्चा, इसने गुस्सा किया, को हर्जा नहीं, आप उसको क्षमा कर दो, आप उसको सद्बुद्धि दे दो, ऐसा और न करे, और किसी को न करे, क्योंकि आपका बच्चा है। तो हर टाइम उन्होंने जो कहा वो अगर मन में नहीं चलता है, नहीं तो हम नेगेटिव भी चलाते हैं पॉजिटिव भी चलाते हैं, उसके कारण जो पॉजिटिव आपने सोचा, कहते हमारा शुभ भावना काम ही नहीं करती है, वो शुभ भावना यहां तक जाती है, फिर एकदम नेगेटिव आ गया, फिर दीवार आ गई, फिर वापस आ गए, तीर आगे जाके फिर वापस आ गया, फिर छोड़ते हो तब तक और एक दफा नेगेटिव करते हो, तो वो तीर जाने के लिए बाबा ने कहा निरंतर जिसका मन स्वच्छ है, निर्मल है, क्लीन है, तो संकल्प तीव्र गति से काम करेगा। आज भी बाबा ने कहा, दुनियावी भी लोग कहते हैं कि किसी के भी नेगेटिव एटीट्यूड को, नेगेटिव वृत्ति को, अशुभ वृत्ति को एग्जाम्पल देते हैं बुद्ध का, कि आप नेगेटिव वृत्ति को भी, अशुभ वृत्ति को भी शुभ वृत्ति से परिवर्तन कर सकते हो। तो मुझे, हमें ये पूछना है, क्या मेरी वृत्ति, मेरे संकल्प शुभ है? कितना परसेंटेज है? सवेरे एक 5 मिनट था, फिर आधा घंटा शुभ हो गया, फिर दिन में एक 5 मिनट शुभ आ गया, फिर शाम को अशुभ हो गया, तो ये अप एंड डाउन हो गया, क्लीन नहीं है। अगर निरंतर क्लीन है तो उसके तरीका, सॉल्यूशन बताया कि कैसे करें। एक मुरली के पॉइंट जेब में रख दो, दूसरा बार बार कभी किसी से मिलते हो, बात करते हो, हमारे आचरण में, बोल में आज के मुरली के पॉइंट बार बार आना चाहिए, तब कहेंगे आपके अंदर धारणा हुआ है। बोलते बोलते कुछ बात कर रहे हो, देखो आज बाबा ने भी ऐसे कहा, देखो मैंने भी आपके जैसे एक ही दफा पढ़ सुना, देखो बार बार एक एक पॉइंट बोली में आती है। संसार में बात करो, लेकिन बीच में आज के मुरली के पॉइंट बार बार आना चाहिए, तब कहेंगे आपके अंदर धारणा है, आपके बोल में बाबा है, ज्ञान है, ज्ञान युक्त बोल है कि अंदर चाहिए। अगर वो नहीं तो दूसरा कहा कि आप होकर के अगर बात होगे, निकाल के पढ़ के बताओ, याद नहीं रहता, कोई हर्जा नहीं, सेकेंड ग्रेड पढ़ के बताओ, देखो बाबा ने एक कहा। और तीसरी और एक बात से पांच है, तीसरा बताता हूं, लेकिन माताएं कम है, भाई है, गृहस्थ में रहते हो, आप कभी कंप्लेंट करते हो, बोलते हमारी माताजी नहीं चलती है ज्ञान में, हमारी युगल नहीं चलती है, माताएं कहते हैं लक्ष्मी नारायण नहीं चलता है, बच्चे नहीं चलते। कारण एक दिन प्रैक्टिकल में देखा, एक व्यक्ति माताजी थी, गीता पाठशाला चलते थे बहुत साल से, और हर साल आके कहते थे भाई जी हमारा नारायण ज्ञान में नहीं चलता है, सुनता भी नहीं, लेकिन सेवा करता है, हर रोज सेंटर में छोड़ने आता है, तो कार से और लेने भी आता है। तो एक दिन अचानक मुझे मिला, मैंने कहा क्यों, तो कहा कि माताजी मुरली सुनती है, योग करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जाके गुस्सा भी करती है, बोलती भी है, हमारा पप्पा रोज सेंटर में जाता है, गुस्सा भी करता है, मारता भी है, बोलता भी है, तो पप्पा जहां जाता है उनका परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? बच्चे कहते हम इधर जाते अच्छा है, हम अच्छे हैं, तो कोई ब्रह्मा को जाएगा ज्ञान सुनने? तो कारण हमारी चलन, हम मुरली सुनते हैं, समय पर घर में जाके मुरली सुनी, गुस्सा करना नहीं चाहिए, सुना, घर जाते ही कुछ हुआ, ऊपर नीचे बरस गया, तो परिवार वाले मानेंगे? पूछ लो आप, बच्चे युगल आपके ज्ञान में चलेंगे? अगर इनका ही उद्धार नहीं हुआ ब्रह्मा कुमार आश्रम में जाके, मेरा क्या होगा, मैं जाऊं अच्छा है। तो हमारी चलन, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन, जैसे माता अपने पति को, बच्चों को खाना खिलाती है, बना के हाथों से खिलाती है ना, तो मन क्या है, खाली है, तो मन क्या कर रहा है उस समय? उस समय याद करो, बाबा ये भी आपका बच्चा है, इस बच्चे को भी मुरली के पॉइंट सुना, मुझे कहा आपने गुस्सा नहीं करो, इसको भी बोलो, मन में, मुख से नहीं बोलना, मन मन को खिला रहा है, हाथ शरीर को खिला रहा है। भाई भी खाना खाने बैठते हो, आपकी युगल बच्चे ज्ञान नहीं सुनते, मुख से सुनाना नहीं, मन में इधर से मुरली सुन के गए, घर में बैठो या खाना खाते, मन में संकल्प करो, बाबा आज आपने मुझे कहा, ये भी तो आपके बच्चे, ये माताजी भी आपकी बच्ची है, इनको भी सिखाओ, मन में आप संकल्प करो उनके लिए, बस आपका संकल्प, मुख का आवाज पहुंचता है, मन का संकल्प भी और तीव्र गति से पहुंचता है। थॉट्स आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। तो ये पढ़ाने का तरीका, मुख से बोलेंगे पता है आपने हमको सुना, आपने गुस्सा नहीं करा, आप ही गुस्सा करते हो, आपका उल्टा बता देंगे। अगर बच्चों को भी बोलेंगे, आप बच्चे पापा आप ही गुस्सा करते हो, हमको कहते नहीं करो, वो आपको ही पढ़ाएंगे, आपको ही याद दिला देंगे। इसलिए आज की दुनिया में शिक्षा देने का भी तरीका चाहिए कि मन संकल्प करो। तब बाबा ने कहा इस साल कि बच्चे मन सा सेवा करो, चैरिटी बिगन्स एट होम, घर से शुरू करो, घर में अपने बच्चे है, युगल है, परिवार वाले है, फिर दुनिया में जाओ, पहले एकदम बाहर नहीं जाओ, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, घर से शुरू करो। समझ में आया? शुभ भावना के बहुत तरीके हैं, व्यर्थ खत्म करने के लिए तरीके हैं। उनको यूज करना पड़ेगा। अपने आप व्यर्थ नहीं जाएगा, अपने आप सिर दर्द नहीं जाएगा। कितना भी करो आप, हर चीज की दवा चाहिए, कारण है निवारण भी है। तो उसको विधि पूर्वक, सिर्फ आपने मुरली सुनी, रोज डायरी में नोट भी किया, गए डायरी घर में रख दिया, आप बिजनेस में गए, खेती में गए, नौकरी में गए, वो डायरी कब खोलेंगी? कब को? एक मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, आज से 15-20 साल पहले एक सेंटर में मैं गया, और नाम भी चाहे तो बताता हूं, नागपुर में गया। तो मैं भर्ती करने गया था, 15-20 साल हो गए, 1980s के अंदर। उस समय गया तो बहन जी को मुरली सुनाने थी, बहन जी मुरली सुनाने बैठी, तब तक मैं भी तैयार होके आके बैठ गया। भाई जी आप मुरली सुनाओ। हमने कहा बहन जी आप ही सुनाओ। नहीं नहीं आप सुनाओ। ठीक है, आया मुरली सुनाने, मुरली लिया, पहले शब्द था ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन नहीं है एक ही है। तुरंत एक भाई उठ के खड़ा हो गया, भाई जी ये मुरली आप मधुबन से लेके आए? नहीं आपने देखा ना, बहन जी ने मुझे अभी दिया है, मैंने मधुबन से थोड़ी लाया, बहन जी ने दिया। अच्छा, मैं 15 साल से ज्ञान में चलता हूं, और आज तक मैंने कभी बहन जी को आप पूछ रहे, मैंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया है, और 15 साल में आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है, और चित्र भी है देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है, ये मुरली कहां से आई? अच्छा हो गया, बहन जी बैठी थी। बहन जी ने तुरंत कहा, भाई जी ये वकील साहब है, ये वकील साहब एक्यूरेट 6:30 बजे आते हैं, और डायरी इनके या लक्ष्मीनारायण के चित्र के पीछे रखते हैं। वो लक्ष्मीनारायण नहीं बनेंगे, उनको बनाना है। ये डायरी ले रोज उधर रखते हैं, आते हैं डायरी निकालते हैं और आधा मुरली सुनते हैं, 6:30 से 7 बजे के बाद वो कोर्ट में जाना है, उनको लिखते हैं मुरली के पॉइंट और वहां रखते कोर्ट में जाते हैं। तो ज्ञान सुनते आधा और लिख करके भी लक्ष्मीनारायण को देके जाते, तुमको लक्ष्मीनारायण बनना है मुझे नहीं, तो इनको कैसे पता चलेगा? है ना, हमारी भी हालत आज ये है, लिखते हैं, कभी कभी कहेंगे आजकल SMS के कारण मोबाइल में भी है, मेरे पास है वो, कभी पढ़ा? समय नहीं मिला, शाम को पढ़ेंगे, अभी बात पढ़ेंगे, है मेरे पास। उसको रखने से नहीं, यूज। तब कहा कभी क्या आधा मुरली सुनते हैं, सुनने के बाद भी उसको पढ़ने के लिए समय नहीं, कल सवेरे आने के बाद वो डायरी खुलेंगी तो उनको कैसे पता चलेगा? इसलिए आप अभी भी देख लो कि इस साल बाबा ने सभी बाबा के बच्चों को एक नई युक्ति बताया। अगर कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई परिस्थिति आए, उसके लिए बाबा ने एक रिफाइन सिंपल एक तरीका बताया। किसी को पता है? हर साल बाबा बताता है, लेकिन इस साल और रिफाइन। हर साल बाबा क्यों आता है? जरूरत नहीं, एक बार आ गया, एक ही बार श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, गीता के अनुसार दोबारा आया नहीं। लेकिन बाबा यहां एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्वयं भगवान आके हर साल पढ़ाता है, तब भारत में भगवान पालना करता है, कहीं भी किसी की कोई धर्म वाले पालना नहीं करते है। सत्य साई बाबा गया, आया दोबारा अपने पालना करने, कितने उनके डिवोटी से आया? नहीं, बाबा गया, हर साल आता है, बच्चों की पालना करता है, तब भारत में माँ बाप भगवान बच्चों की पालना करते हैं। तो बताओ, इस साल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताया, रिफाइन सिंपल। बच्चे, संसार कलयुग है, बहुत जन्मों के हिसाब किताब है, कोई परिस्थिति हो, समस्या हो, विघन हो, कोई दुख हो, बच्चे एक काम करो सिंपल। किसी को याद है? हाँ, देखो ये लगता है छोटा छोटा सा, ठीक नहीं है, लेकिन देखो पूरे मुरली याद है इसको, राजस्थान का राजा है। हाँ, इसको बहुत साल कुमार है, राजस्थान का राजा, देखो मुरली के पॉइंट एक्यूरेट याद है। कहते हम सोचते थे थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन एक्यूरेट है बाबा के ज्ञान में। तो बाबा ने इस साल बहुत अच्छे, इस साल इधर इस तरह बताओ, कोई किसी को याद है बाबा ने जो बहुत सुंदर युक्ति है? क्योंकि हाँ देखो, एक कुमार को याद है, बाबा ने बहुत सुंदर तरीका, संसार में चलते फिरते विघन आते हैं, समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, कि कलयुग है ये, है ना, दोनों है, दोनों का संगम, पर हर कदम में है बाबा सॉल्यूशन देता है, सिंप्लीफाई करता है, एकदम सिंपल करके, नाम सहज योग। बच्चे कभी भी कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, तन से नहीं, अंडरलाइन किया, तन से मधुबन में नहीं आना, तन की बीमारी तो डॉक्टर ठीक करेगा, बच्चे मन से तुरंत मधुबन पहुंच जाओ, और बाबा मन को शक्तिशाली बनाएगा। ये सिंपल थे, कहीं भी रास्ते पर चलते चलते एकदम याद करो, अरे मैं तो बाबा के कमरे में बैठा हूं, बाबा के शांति स्तंभ में बैठा हूं, बाबा के झोपड़ी में बैठा। तब बाबा ने कहा चारों धाम का चक्कर लगाया, देखा आपने आपके अंदर प्रिंट है। एक सेकंड में संकल्प करो, कहीं समस्या आई तुरंत बाबा के कमरे में पहुंचो, शांति स्तंभ में पहुंचो, बाबा आपने कहा था मधुबन में आओ, मैं आ गया हूं, बताओ मैं क्या करूं। बाबा जो बाबा ने वादा किया बाबा निभाएगा करते। तो ज्ञान जो बाबा इतना आके सुनाता है, छह महीना इतने परम धाम से आके मेहनत करके बैठ के अपना तन नहीं दूसरों का तन में बैठ के मेहनत करता, अगर उसका रिगार्ड क्या है। हम कहते बाबा से मेरा बहुत प्यार है, प्रूफ। तो उन्होंने जो कहा उसको हमें आत्मसात, अगर एक पॉइंट ले लो, बहुत भी नहीं ले सकते हो, समथिंग इज बेटर। एक या दो पॉइंट अपने आचरण में ला लो तो भी कहेंगे नंबर तीसरा नंबर बच्चा है, दूसरा नंबर है, नंबर वन बच्चा है, वफादार है, ईमानदार, किसको कहेंगे। जो बाबा ने श्रीमत दी उसको कम से कम आचरण में लावे एक बात। तो इस बात को याद रखो कि संसार में कलयुग है, अंतिम समय है, बहुत जन्मों के हिसाब किताब चुक तो करना है ना। तो आते हैं कभी, नहीं ऐसे नहीं, हर एक के जन्म में है, लेकिन उसका बाबा देख करके, बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता हूं, देखता हूं बच्चों की परिस्थिति क्या है, दवा भी देता है, लेकिन उस दवा को साथ में रखो, यूज करो। कभी कुछ हुआ चलते चलते एक मिनट में एक सेकंड में मधुबन पहुंच जाओ, पहुंच सकते हैं ना कि नहीं, मन से याद कर सकते हो कि कठिन है, कि तन से ही आना चाहिए। अभी यहां बैठे बैठे एक मिनट सेकंड के अंदर आप घर में चक्कर लगा के आते हो, ऑफिस में भी चक्कर लगा के आते हो, है ना। तो ऐसे बैठे बैठे मन से, बाबा ने कहा तन से नहीं आना। मंजूर, समझ में आ गया कि व्यर्थ को समाप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके लिए स्वयं के ऊपर ही अटेंशन, मेरे कारण औरों के मन में अगर व्यर्थ चलता है, मेरे बोल, मेरे कर्म, इवन आप पूछेंगे और भी सूक्ष्म है, मेरे वाइब्रेशन का, अगर आप बैठे हो सोफा पर, दो भाई बैठे हैं, आपको नींद आती है तो वो वाइब्रेशन उसको भी धीरे धीरे, वो अलर्ट बैठा है धीरे धीरे उसको भी वाइब्रेशन आते हैं, वो भी कहता मैं अलर्ट बैठा हूं, मुझे नींद क्यों आ रही है। क्योंकि ऐसे आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाओ, आप बहुत अच्छे हो, बाबा के योग में बैठे हो, और बाजू वाला बैठ करके व्यर्थ विचार कर रहा है, विकल्प कर रहा है, तो ये पंखा चलता है तो हवा नहीं आएगी, अंदर पंखा चल रहा है, कौन सा सदाचन चक्कर चल रहा है, वो हवा दूसरों को भी पहुंचती है, ऐसे नहीं आपको ही ठंडा करता है, बाजू वाले को भी ठंडा कर देता है ना। जो ऊपर जा रहा था उसको नीचे लाता है ये पंखा अंदर जो चल रहा है, कि आप इधर बैठे बैठे दूसरों को, तब बाबा ने कहा वाइब्रेशंस भी प्रभावित करती है। इसलिए कहते शांति क्या है, व्हाट इज साइलेंस, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस, प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। तब आपको, आपके भाई जी मैं क्या करूं, मैं तो अच्छी तरह से योग में बैठा हूं, मुरली सुनने वाला, लेकिन ये नींद करता है, ये गलत विचारता, मैं क्या करूं, है ना। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी बहुत तेज बरसात आती है, आप क्या कर सकते हो, आपको तो जाना है, क्या कर सकते हो, छाता लेके जाओ, उसके लिए योग नहीं लगा कि बरसात बंद हो जाए, नहीं, औरों को बरसात चाहिए, आपको नहीं चाहिए, और तड़स रहे बरसात पानी के लिए, आप योग लगा रहे हो बाबा बरसात बंद करो, ये काम नहीं करो, आप अपने प्रबंध करो, आप छाता लेके जाओ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर वो भाई नींद करता है तो वो करता, आपका मन खाली है, रिसीवर खाली है तो फोन आएगा, रिसीवर एंगेज करो तो वो कितना भी रिंग बजा रहा है आपके अंदर आ ही नहीं रहा है। तब बाबा ने कहा अपने को बिजी रखो, डू नॉट ब्लेम अदर्स, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं हो सकते, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, को अर्जन है, उसको अपना रोल है, मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट, अपने को क्या करो, बचाओ, अपने प्रबंध आप करो, मुझे मेरे पर दूसरे का प्रभाव नहीं आना चाहिए, मेरा मन औरों के विचार को रिसीव नहीं करना चाहिए। तो आपका मन बिजी रखो, मुरली के पॉइंट है, इसलिए हमारा राजयोग डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस है। अर्थात योग में जब बैठते हो, ज्ञान युक्त योग है हमारा, विज्ञान छोड़ के नहीं, तब कहा, बाबा ने कहा, बच्चे बीज रूप स्थिति में ही विकर्म विनाश होते हैं। नहीं तो आप कहेंगे भाई जी हम 10 साल से योग कर रहे अभी तक क्रोध ही नहीं जा रहा है, 10 साल से इस डॉक्टर की दवाई ले रहे हम बीमारी नहीं जा रहे, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे? और आप जानते हो 10 साल से कागज धूप में रखा हुआ है, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती हो कागज जलेगा नहीं, वही कागज है वही सूर्य की किरणें हैं। अगर एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें एक ही जगह पर एकाग्र होती है, एक ही मिनट के अंदर भस्म कर सकते हो। चमत्कार नहीं है, ये जादू नहीं है, ये विधि से सिद्धि है। तो यहां भी आप कितना भी कहो मैं 4 घंटा 2 बजे उठता हूं और योग में बैठता हूं, विकर्म विनाश नहीं होंगे। तब शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को नहीं जीत सका, विधि से सिद्धि। तब बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप छे, ज्वाला स्वरूप में क्या करते हो आप? कुछ नहीं है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। कभी भी आप योग में बैठो आराम से, मन और बुद्धि को खाली छोड़ना नहीं, नहीं तो मन चिंतन करता मैं आत्मा हूं ज्योतिर्मिंदर, आज इसको फोन करना था। कौन कह रहा है? दो आत्मा तो नहीं है, बुद्धि खाली है, खाली बुद्धि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई विचार आते हैं, तो ये दोनों चक्के चलना चाहिए। तब बाबा ने कहा मन और बुद्धि को एक करो और पावर हाउस से जोड़ते हो तो करंट आता है, तब बल्ब जलता है, ये दोनों को एक करना चाहिए। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, अब भी आप एक 5-6 दिन पहले देखो बहुत सुंदर एक मुरली के पॉइंट सुना बाबा ने मुरली में कि अविधेयी कब बनेंगे, अशरीरी कब बनेंगे, विधि बता। अशरीरी बनने के लिए देह और देह के संबंध और देह के धर्म को भूल जाना है। अभी योग अशरीरी बन जाओ, देखो कितने को नींद आ जाती है।
तुमको आना है शिल्पिता को अब याद। लास्ट में एक बात बताता हूँ कि कोई भी कुछ करने के बाद बाबा कहते हैं पालना का रिटर्न दे दो, कहता है ना, तो बाबा ने आप सबको, कुमारों को, अदर कुमारों को, दोनों है, और बाबा के पास सभी कुमारी है, अदर कुमार तो नहीं है, कोई है नहीं, ज्ञान सुनने के बाद पवित्रता आ गई, अदर कुमार नहीं, कुमार है, ब्रह्मा कुमार है, अभी अदर कुमार तो है ही नहीं है, है ना। तो से ज्ञान समझ में आया उस दिन से आप कुमार हो, चाहे कुमार है या अदर कुमार, आधा तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कुमार है सभी, तो सबके बाबा ने पालना किया, तीन चार दिन अभी आपने ज्ञान सुना, खिलाया पिलाया, उसका रिटर्न तो देना पड़ेगा ना, पालना का रिटर्न देना पड़ेगा, क्या देंगे आप। तो ऐसे लगा बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिंपल एक जो आज के टॉपिक के अनुसार, और इस साल बाबा की इच्छा भी थी, बाबा ने कहा था बच्चे स्वयं निर्विघन, सेंटर निर्विघन, और बाबा ने कहा था बच्चे ये क्रोध स्वयं को भी जलाता है औरों को भी जलाता है, दूसरों के नींद फिटाने का, दुख देने का, पर चिंतन व्यर्थ चलने का कारण स्वयं को भी, आप गुस्सा करके भी मन शांत नहीं रहता है, आपका तन भी उबलता है, खून भी उबलता है, मन भी उबलता है, क्रोध है ये, अग्नि है ये, स्वयं को भी औरों का भी, औरों का भी तन गर्म करता है, खून उबालता है और मन भी उबलता है, इन दोनों के लिए समाप्त करने के लिए, और वातावरण भी बिगड़ता है, जो देखता है वो कहता है इतना साल ज्ञान में चलता है, इतना अच्छा है, ऐसे बोलता है, उनको भी अवस्था खत्म कर देता है। इसके लिए एक ही बाबा को एक ही काम करो, बहुत कुछ करना है, पांच विकार है, पांच विकार छोड़ दो। बाबा ने कहा एक आप काम करो, हजार कदम मैं उठाता हूं, तो एक काम करके जाओ कि जाते समय लास्ट, क्योंकि आप ही बचे हुए लास्ट में, तो जाते समय एक छोटे से कागज पर लिख के या बाबा के कमरे में बैठ करके, बाबा एक महीने के लिए, एक साल भी नहीं, मिनिमम एक महीने के लिए क्रोध को आप अपने पास रखना, हमारे पास भेजना नहीं, हाँ हम आएगा तो भी उसको लेंगे नहीं, बाहर रख देंगे, तो ये तैयार करके जाओ बता करके बाबा को, और कागज लिख करके जेब में रखना सदा, बार बार पढ़ाते रहो, याद दिलाना पड़ता है ना, भूल जाता, अरे भूल गया, फिर भी बाबा ने उसका भी सॉल्यूशन दिया, बच्चे एक दफा अगर भूल के हो गई फिर तुरंत बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आज मैंने वादा निभाया नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मम्मा की ये क्वालिटी थी, मम्मा नंबर वन क्यों बनी, एक ही कि एक तो कहती थी एक बार की हुई भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है ये, एक बार होती है, करंट लगता है पता नहीं चलता है, दोबारा हाथ उधर नहीं जाता है ना, तुरंत सावधान होता है, अगर एक बार आप गाड़ी में बैठे कभी एक्सीडेंट हुआ, दोबारा गाड़ी में बैठ जाते ही नजदीक पहले संकल्प आता है, अरे एक्सीडेंट हो गया तो, ये व्यर्थ का कारण पहले एक बार हुआ है, इसलिए वहां ही समझाना है, दोबारा नहीं, अब मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाप है, मैं अकेले नहीं बैठा हूं, भगवान मेरे साथ है। तो ये बाबा को अगर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आपके साथ हूं, आपके मददगार हूं, कभी ये भी इस साल बाबा ने कहा, कब बाबा मददगार है, बाबा ने कहा कोई भी कर्म करने से पहले अगर बाबा को बता करके करते हो तो बाप जिम्मेवार है, वहां सफलता निश्चित है, अगर करके फिर बाबा को बताते हो तो बाबा की गारंटी नहीं है। ये भी बाबा ने इस साल कहा, कोई कर्म करने से पहले बाबा को पूछ के करो, घर से निकलते हो बाबा को बता के जाते हो तो बाप जिम्मेवार है, रक्षक है, मंजूर, समझ में आ, बहुत सारी है व्यर्थ का कारण और उसका निवारण, सिंपल है, लेकिन अपने बोल, अपने चलन, अपने कर्म, जैसे खाना लेने जाते हो, भीड़ करते, एक आगे लाइन से रहो, डिसिप्लिन, दूसरों का मन में विचार चलता है, देखो मैं पांच मिनट से खड़ा हूं, ये अब भी आया और आगे आ गया, उसके मन में चलता है, उसके मन में चलने का कारण मेरी चलन, तो आप अपने को देखो, व्यर्थ मेरे भी औरों का क्यों चल रहा है, इसका समाप्त कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, और चारों दिशा देख लो, वन डायमेंशन नहीं, चारों दिशा, आगे पीछे, मेरे पीछे कौन है, साइड में कौन है, चारों दिशा चल के जाते हो तब स्वयं का, औरों का, व्यर्थ को आप समाप्त कर सकते हैं, स्वयं का भी औरों का भी, ठीक है। ओम शांति।
मेरे तुम हो।